अध्याय 21 वार्ता अर्थ परिभाषा महत्व एवं अंग। प्राचीन भारत में वार्ता के अर्थ, प्राचीन भारत में वार्ता के महत्व। भूमिका, प्राचीन काल में धन के उपार्जन या अर्थ से संबंधित विषय के लिए वार्ता शब्द का व्यवहार किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि वार्ता शब्द मनुष्य के आर्थिक जीवन के क्रियाकलापों से संबंधित था। कौटिल्य ने वार्ता की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि कृषि पालन, पशु पालन और वाणिज्य वार्ता के विषय थे। वार्ता का अर्थ एवं परिभाषा। वार्ता के अर्थ के संबंध में महाभारत में कहा गया है कि वार्ता से संसार का पोषण होता है, इसलिए वह लोक का मूल था। इसे सर्वदा धारण अथवा अनुसारित करना चाहिए। वार्ता मूल्यो अयम लोकस्य तथा वैधार्यते सदा, तत् सर्वं वर्तते सम्यक् यथा रक्षति भूमि सह। मनु ने भी वार्ता के महत्व को स्वीकार किया है तथा व्यवहारिक और लोक ज्ञान के लिए अनिवार्य माना है। त्रैविद्येभ्य स्त्रियम विद्या दंड नीतिम च शाश्वतीम अन्विच्छिकीम चात्म विद्याम वार्ता रामभाष्य लोकतः। कौटिल्य ने राजा के लिए वार्ता का अध्ययन करना अनिवार्य माना था। वित्तोपनयनस्त्रयीयम अन्विच्छिकी च शिष्टेभ्यम वार्ताम अध्यक्षेभ्यम दंड नीति वाक्यम प्रभो वित्तम। अमरकोश ने वार्ता को जीविका के पर्यावाची के रूप में स्वीकार किया है। अजीवो जीविका वार्ता, रामायण में तो इसे लोक में सुख प्राप्ति का साधन माना गया है। राम जब भरत से मिले तब उन्होंने वार्ता में संलग्न कृषि गोरक्षा जीव जन समुदाय की कुशलता पूछी थी। वार्ताया संप्रवतम कलो अयम सुख मेधते। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जब द्वापर बोधित युग वेद के साथ मति भेद उत्पन्न हुआ तब मनसा कर्मणा और वाचा किचता पूर्वक कठिनता से एक वार्ता की व्यवस्था की गई। दापरे अर्थवा भरवंतते मति वेदस्तदा निराम मनसा कर्मणा वाचा किच्छदार्ता प्रसिद्ध्यति। वायु प्राण ने भी वार्ता को वृत्ति से निष्पन्न माना है जो व्यवसाय और उसके निमित्त किए जाने वाले कार्य से संबंध था। ततः पदुर्भव तसाम सिद्धि अस्त्रेताम युगे पुनः पदार्थ साधि काप्यान्या द्वितीय अस्ताता साही कामतः। अन्य पुराणों के अनुसार बीजों को उत्पन्न करने के लिए वार्ता की नियोजना की गई थी। ततः सतासाम वित्त अर्थ वातोपाय चंकार है। विष्णु पुराण में इसे एक विद्या माना गया तथा इसके अंतर्गत कृषि पशुपालन और वाणिज्य को समाविष्ट किया गया। बारहवीं सदी के लेखक हेमचंद्र ने भी वार्ता को वृत्ति से संबंधित माना। इससे स्पष्ट है कि वार्ता का संबंध वृत्ति से था तथा वृत्ति के अंतर्गत कृषि पशुपालन और वाणिज्य का सन्निवेश था। अतः निश्चय ही आर्थिक जीवन के विकास क्रम में कृषि पशुपालन और वाणिज्य जैसी वृत्तियों का प्रमुख योग था तथा व्यक्ति समाज और राष्ट्र के उत्थान में इनका उल्लेखनीय महत्व था। वार्ता के अंग, वार्ता को परिभाषित करने के बाद उसके अंगों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इस संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि आण्विच्छिकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड तस्य नीति दंड नीति। अर्थात राजा के लिए अध्ययनार्थ अनिवार्य विषयों में आण्विच्छिकी त्रयी एवं वार्ता का नियोजन किया गया है। अर्थशास्त्र में इन्हीं योग एवं क्षेत्र के साधन को नीति को दंड नीति कहा गया है और यह भी कहा गया है कि इसके अंतर्गत कृषि पशुपालन और वाणिज्य का समावेश था। इससे प्रतीत होता है कि वार्ता का प्रमुख विषय कृषि पशुपालन और वाणिज्य था। इन विषयों का अध्ययन निम्नलिखित है। कृषि, प्राचीन काल से अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि रहा है। आर्यों ने अपनी भ्रमणशील प्रवृत्ति का परित्याग कर जब अस्थायी जीवन यापन आरम्भ किया तो अपने भरण पोषण को ही आधार बनाया। इस संबंध में ऋग्वेद में कृषि व्यवस्था का समुन्नत विवरण उपलब्ध होता है। हल से भूमि की जुताई के अनेक उदाहरण हैं जिनमें 6, 8 या 12 बैल लगे होते थे। ऋग्वेद में खलिहान चलनी शूल्क तथा अन्य मापन के उल्लेख का होना निस्तमेव कृषि के सर्वांगीण विकास की ओर संकेत देता है। सिंचाई के लिए कूपों का प्रयोग होता तथा नहरों एवं तालाबों की भी व्यवस्था की गई थी। हल से जोती गई भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। अन्न के पक जाने पर उसे हसिया से काटते थे और तदुपरांत गट्ठर वस्त्र बांधकर ले जाते थे। कटे हुए अनाज खलिहान खल में इकट्ठे किए जाते थे जहां उसे मंडित किया जाता था। उन्हें चलनी कोष्टक में च्युत और सूप कोष्टक में सूप से ओसाया जाता था, जिससे भूसा अलग हो जाता था और अनाज अलग। अनाज ओसाने वाला ध्यानकृत कहा जाता था। प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक आर्य विभिन्न प्रकार के अनाजों का नामकरण नहीं कर पाए थे। यह कार्य उत्तर वैदिक युग में आकर पूर्ण हुआ। कृषि के प्रति वे अत्यधिक जागरूक थे तथा उसके प्रबंध में वे सम्मिलित होते थे। निश्चय ही इन्हें इनका ज्ञान भारत आने के पूर्व ईरान में ही हो चुका था, जिसकी पुष्टि अवस्था से होती है। उत्तर वैदिक युग तक तंडुल, मांस, सांबा, सरसों, गेहूं, गन्ना, मसूर इत्यादि फसलों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। उस समय दो प्रकार की फसलें होती थी, कष्टपत्य जो कृषि द्वारा उत्पन्न होती थी, अकिष्टपत्य जो वनों में स्वमेव उत्पन्न होता था। उत्तर वैदिक युगी कृषि व्यवस्था समुन्नत एवं सुदृढ़ थी। भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए गोबर कोष्टक में करीस के रूप में खाद का प्रयोग करते थे। अथर्ववेद में कहा गया है कि पशुओं की प्राकृतिक खाद अधिक मूल्यवान थी। अन्न का महत्व समाज में ब्रह्मा के रूप में माना जाता था। तैतरीय उपनिषद में प्रसंग है कि अन्न ही ब्रह्मा है, अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही सबकी आजीविका चलती है। नष्ट होने के बाद सभी अन्न मिल जाते हैं और अंततो गत्वा एक रूप हो जाते हैं। अन्न उत्पादन के लिए तत्कालीन समाज के लोग कितने जागरूक थे तथा अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करने में विश्वास करते थे, इसलिए उपनिषदों में अन्न बहुकुर्विता का स्मरण किया जाता है। अष्टाध्यायी की भूमिका को क्षेत्र कृषि के लिए अयोग्य भूमि के ऊपर पशुओं के चलने योग्य भूमि को गोचर जुती हुई भूमि को हल या सित्त कहा गया है। बौद्ध एवं जैन साहित्य में भी विभिन्न प्रकार के अन्य भूमि एवं भूमि जोतने की विधियों का वर्णन है। अर्थशास्त्र के युग तक तीन प्रकार की फसलों का विकास हो गया था, जो वर्षा के प्रारंभ, मध्य एवं अंत तक बोई जाती थी। किसी के विकास के लिए कौटिल ने सीताध्यक्ष नामक एक अधिकारी का भी उल्लेख किया है, जो बीज वपन का पूर्ण ध्यान रखता था। कर्मोदिक प्रमाणेन कैदारम हेमंतम ग्रैस्मिकम वा सख्यम स्थापयेत। पतंजलि के महाभाष्य में खेत जोतने, बोने, निराने, काटने, गाहने, सलाने इत्यादि क्रियाओं का उल्लेख है। नाना क्रिया कृषे अर्थ नावश्यम कृषिर विलेखन एवं वर्तते। गुप्त युग तक कृषि अपने पूर्ण उन्नत रूप में प्राप्त होती है। कमंदक ने शांति एवं सुव्यवस्था के वातावरण में उन्नत कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख किया है। सिंचाई के लिए भी गुप्तों ने विशिष्ट ध्यान दिया था। स्कंद गुप्त के काल में गिरिनार के चक्रपालित ने 2 महीने के कठिन प्रयास से जूनागढ़ झील का जीर्णोद्धार कर उसे सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाया। मध्य युग तक कृषि की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक हो गई। मेघातिथि ने 17 प्रकार के अन्न का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि वार्ता का मुख्य अंग कृषि, पशुपालन और वाणिज्य के रूप में सतत विकसित होती रही। पशुपालन वार्ता का द्वितीय अंग पशुपालन तो वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। पशुधन वैदिक संपन्नता का प्रतीक था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि गाय वैदिक युग में क्रय विक्रय का माध्यम होती थी। एक मंत्र में गायों से इंद्र मूर्ति खरीदने का उल्लेख है। का इवम दस भीमर्मेन्द्र क्रीणाति धेनुभि। वैदिक युग की वन संपदा अपार थी। पशुओं के चरने की पूर्ण सुविधा थी। कृषि के विकास के साथ ही चारों गांवों का विकास हुआ तथा जो कृषि योग्य भूमि नहीं होती थी उसे चारागाह के लिए छोड़ दिया जाता था। ऋग्वेद में पालतू पशुओं के रूप में बैल, अश्व, भेड़, बकरी, गधे तथा कुत्तों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। वैदिक के पश्चात पशु पालन गौण हो गया, किंतु कृषि के लिए बैल तथा अन्य कार्यों में बैल की उपयोगिता के कारण तथा अन्य औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं का राजकीय सुरक्षा भी प्राप्त थी। पशु राजकीय कर का भी एक मुख्य स्रोत था, अतः चारागाहों को नियमित व्यवस्था भी की जाती थी। कामंदक तथा शुक्र ने पशुपालन को राजकीय कोष का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। वाणिज्य सामाजिक एवं राजनीतिक अभ्युत्थान के लिए वार्ता, कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ वाणिज्य का भी विशेष योगदान था। ऋग्वेद में वाणिज्य से संबद्ध लोगों को पड़ी या बड़ी कहा गया है। अथर्ववेद 26 में मूल भाव के आधार पर क्रय विक्रय के उद्देश्य उल्लेख प्राप्त होते हैं। वैदिकोत्तर युग में नगरों के विकास के साथ वाणिज्य में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। विभिन्न देश के व्यापारियों को विभिन्न नामों से संबंधित किया गया, यथा मध्य देश के वणिक को मदरावाड़ी गंधार व्यापारी को गांधारवाड़ी कहा गया। पाड़ी ने थोक व्यापारी को क्रय विक्री के नाम से संबोधित किया। दुकान या व्यापार को आपण तथा दुकान या बाजार में बेची जाने वस्तुओं को पण्य या पाड़ितव्य कहा गया। जातकों में व्यवसाय के लिए नगर में विभिन्न विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। वस्त्र, तेल, अन्न, साग और स्वर्ण, रजत, रत्न तथा आभूषणों इत्यादि की दुकानों की विधियों के अनेक उल्लेख हैं। मौर्य तथा मौर्योत्तर युग तथा अंतरदेशीय एवं बाह्य व्यापार प्रतिष्ठित हुए। अर्थशास्त्र में इनकी देखरेख के लिए पाण्याध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख है, जो व्यापारियों एवं व्यापारिक वस्तुओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। पाण्याध्यक्ष स्थल जल जनाम नाना विधानाम पण्यानाम स्थल पतय वादी पथो यातानाम प्रिय प्रियाताम च विध्यात। मौर्योगी व्यापार पूर्णतः राज्य नियंत्रित था, क्योंकि राज्य को उससे अतुल संपत्ति कर के रूप में प्राप्त होती थी। गुप्त युग में बाजार को विपणी नाम से अभिहित किया गया। इस युग में तथा गुप्तोत्तर युग में मौर्यों द्वारा स्थापित वाणिज्य नीति का ही अनुसरण किया गया। वाणिज्य विभिन्न उद्योगों पर ही आधारित था। प्राचीन साहित्य से यथा वासोवाय, तंतुवाय, करमार, हिरण्यकार, कुलाल, कचर्मकार, मालाकार, कुंभकार इत्यादि शब्द विभिन्न उद्योगों के ही द्योतक है। गुप्त युग में उद्योग भी चरम उत्कर्ष पर था तथा इसके बाद निरंतर विकास होता रहा। मूल्यांकन इस प्रकार स्पष्ट है कि वार्ता के तीनों प्रमुख अंग कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य वैदिक युग से भारत में प्रचलित थे। कृषि एवं वाणिज्य तो निरंतर विकास की ओर उन्मुख होते रहे। इन्हें राजकीय प्रत्यय भी प्राप्त होता था, क्योंकि राज्य की आय के ये महत्वपूर्ण स्रोत थे। राज्य की आर्थिक धुरी वार्ता थी, इसलिए वार्ता के संवर्धन के लिए नूतन अभिकार किए जाते थे।